Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Shrotriya Brahmanishtha प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आत्मस्वरूप प्रिय आदरणीय मधु बाबूजी तिजोरी वाला जी भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले पवित्र आत्मा आत्मस्वरूप साधक जन कठोपनिषद के अंतर्गत आचार्य यम बालक नचिकेता के सामने तत्व ज्ञान की और तत्व ज्ञान को पाने वाले जिज्ञासु की दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तो संपरित्य विविनक्ति धीराः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। दो मार्ग श्रेय और प्रेय, भोग और मोक्ष, नीति और अनीति, धर्म और अधर्म, और इन दो मार्गों के बीच में व्यक्ति हैं। इन दो मार्गों में जो श्रेय मार्ग हैं उस पर चलने के लिए धीर, वैराग्य, धैर्य की आवश्यकता है। वैराग्य के बिना ज्ञान के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। ये मार्ग तो ऐसा है जैसे व्यक्ति नदी में तैरता है और नदी में बहता भी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई व्यक्ति बह रहा है, बहने के लिए कुछ करना नहीं होता है, बिना किए व्यक्ति बहता है, बहने के लिए पुरुषार्थ नहीं है, बहने में पराधीनता है, परतंत्रता है, बहने में व्यक्ति अवश्य है। इसलिए कोई व्यक्ति गौरवपूर्ण ढंग से नहीं कह सकता है कि मैं बहा, बहने में कोई स्वाभिमान नहीं है। लेकिन जो तैरना है उसमें पुरुषार्थ है, तैरने में स्वतंत्रता है, कुछ करना पड़ता है, बहने के लिए कुछ करना नहीं है, तैरने के लिए कुछ करना पड़ता है। पुरुषार्थ की सार्थकता बहने में नहीं है, तैरने में। तैरना माने विपरीत धारा, नदी की विपरीत धारा को काटना है और उस किनारे पहुंचना है, अपने को बचाना है। डूबने से बचाने का ही प्रयत्न तो तैरना है। बहने में तो डूबना अनिवार्य है, मरना अनिवार्य है, और जहां तैरने की प्रक्रिया है वहां बचाव है। ऐसे ही यहां पर बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम कह रहे हैं, अध्यात्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग तैरने का मार्ग है। और कामना का, विकार का, संसार का मार्ग, ये बहने का मार्ग है। आदमी वासना में बहता है, तैरता नहीं है। कामना में, विकार में बहता है, वह स्वतंत्रता नहीं होती है। क्रोध में स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ने बहुत सुंदर एक बात कही, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रंशः, और स्मृति विभ्रंशात विनश्यति। भगवान ने क्रम बता दिया, विनाश तक का क्रम बता दिया। संगात संग, संग माने इंद्रिय और विषयों का संग। संग से कामना पैदा हो जाती, कामना माने काम, कामना माने चाह। यहां काम शब्द का अर्थ केवल विकार काम के अर्थ में नहीं है, यहां स्त्री और पुरुष के अर्थ में ही नहीं। काम माने कामना, काम माने इच्छा, चाह। संग से, इंद्रियों की विषयों के संग से कामना पैदा हो जाती है। और कामना का एक स्वभाव है, वहां पाने का प्रयत्न है। जहां पर भी कामना है वहां पाने का प्रयत्न है। कामना में वेदना है, मैंने आपको कल भी कहा था, कामना में वेदना है, कामना में श्रम है, कोशिश है। और जब वस्तु मिल जाती है वो कामना लोभ बन जाती है। कामना ही तृप्त होकर लोभ बन जाती है। ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि काम से कभी कोई अकाम नहीं हो सकता है, वासना से कभी कोई निर्वसन नहीं हो सकता है। वासना का मार्ग हमें और वासना में ले जाएगा, और गहरी वासना में ले जाएगा। लोभ और कुछ नहीं है, जो गहरी से गहरी कामना है वही लोभ है। जैसे आदमी को लगता है कि हमारे पास इतने पैसे आए, 1 करोड़ रुपए आए, बहुत हो गया, बस उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर भगवान का भजन करेंगे, ऐसा लगता है। इतना हो जाए बस, इतना होने के बाद फिर हम लोग वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, बड़े बड़े तीर्थों में घूमेंगे, सत्संग करेंगे, साधु महात्माओं के दर्शन करेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे। आनंद की प्रतीक्षा है, केवल अध्यात्म की ही प्रतीक्षा नहीं है, आनंद की भी प्रतीक्षा है, शांति की भी प्रतीक्षा है। हम शांति का अनुभव करेंगे, हम करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वर्तमान में शांति का अनुभव कैसे हो, कैसे सुख मिले, इस पर विचार नहीं करते। हम सोचते हैं इतना होने के बाद हम आनंद मनाएंगे, आनंद की प्रतीक्षा है। लेकिन उतना करने के बाद, उतना धन कमाने के बाद, उतना काम होने के बाद, फिर वो समाप्त नहीं होता है, कामना समाप्त नहीं होती है। 1 करोड़ रुपया मिला, फिर आदमी सोचता है महंगाई बढ़ गई है, और 2 चाहिए, 2 मिल जाए तो और अच्छा, 2 मिले बस बस बस। हम सर्व कुछ छोड़कर हम त्याग ग्रहण करेंगे, केवल धन के मामले में नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इतना करने के बाद। लेकिन वो कामना समाप्त नहीं होती है, वो कामना और गहरी हो जाती है। और उस गहरी कामना का ही तो नाम लोभ है। और गहरी हो गई कामना, और कामना को त्याग कर सकते हैं, कामना को छोड़ सकते हैं, लेकिन लोभ को छोड़ना मुश्किल है। लोभ का त्याग करना बहुत कठिन है और चाहिए, इसलिए कई बार देखने को मिलता है पहले आदमी बहुत उदार था, पैसा आने के बाद कंजूस हो गया। कई बार आप देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो बहुत ज्यादा उदार होता है, और कई बार बहुत कुछ होने के बाद भी आदमी कंजूस हो जाता है। उसका कारण यही है, वो कामना लोभ बन गई, और लोभ बनने के बाद छोड़ना बहुत मुश्किल है, लगाव हो गया। लोभ माने बहुत गहरा लगाव है। कामना जब तृप्त होती है तो लोभ बन जाती है, और कामना अतृप्त रह जाती है तो क्रोध में रूपांतरित हो जाती है। जो हमने चाहा नहीं मिला, अब क्रोध में ले जाएगी वो कामना, वो चाह हमें क्रोध में ले जाएगी, आक्रोश में ले जाएगी। और ये दोनों चीजें हैं हमारे जीवन में, लोभ और क्रोध हमें सम्मोह में ले जाता है। संगात संजायते कामः, कामात लोभो अभिजायते, कामात क्रोधो अभिजायते। ये दोनों चीजें समझना चाहिए, काम से लोभ भी पैदा होता है और काम से क्रोध भी पैदा हो जाता है, और ये दोनों चीजें हमें सम्मोह में ले जाती है। अर्जुन के जीवन में यही तो हुआ, लोभ पैदा हुआ, अपने स्वजनों के प्रति लोभ, और बहुत गहरा लोभ। सब कुछ भूल गया, प्रतिशोध की भावना, उन्होंने कितने अपमान किए, कौरवों ने इतने अपमान किए, एक अपमान ही युद्ध के लिए पर्याप्त था, और उन्होंने अनेकों अपराध और बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी की थी। अर्जुन आदि लोगों ने सब कुछ भूल गया, मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया, और सम्मोहित होने के बाद उस कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म सब कुछ भूल गया। ये सम्मोह, और सम्मोह व्यक्ति को क्या करता है? स्मृति, स्मृति का अर्थ है स्मरण, याद। शास्त्र आप पढ़ते हो ना, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण पढ़ते कि नहीं? स्मृति माने शास्त्र, स्मृति माने सत्संग, स्मृति माने बड़ों के जो वचन है, वो सारा ज्ञान आदमी का भूल जाता है, लोभ पैदा हो गया, आदमी भूल जाता है, क्रोध में आदमी भूल जाता है, अच्छे बुरे का विवेक नहीं रहता है, मार्ग भटक जाता है व्यक्ति। हम लोग देखते हैं ना, कामादि विकार, लोभादि विकार, क्रोधादि विकारों में आदमी सब कुछ भूल जाता है। एक बड़ी मजेदार बात, हम लोग बनारस में जब पढ़ते थे, गंगा किनारे आके बैठ जाते थे संध्या के समय, छुट्टियों के दिनों में बड़ा आनंद आता था। एक बार हम लोग बैठे हैं, पांच छह साल के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे एक खेल कर रहे थे वहां, उनका बड़ा मजेदार खेल था। उन्होंने 5 रुपए के नोट को धागे से बांध रखा था, और वहां से जो भी आदमी गुजरता और वो 5 रुपए का नोट उठाने लगता, उस नोट को खींच लेते थे। हमने देखा, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कर क्या रहे हैं? बच्चों ने हमको इशारा किया, स्वामी जी नमो नमः, चुप रहना। हमने भी सोचा चलो देखते क्या होने वाला है आगे। उसी एरिया के एक बहुत समृद्ध संभ्रांत परिवार के एक व्यक्ति आने लगे, हम समझ गए अभी जाल में फंसा लेंगे बच्चे उनको। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो, जैसे उधर से आए और उनकी दृष्टि 5 रुपए के नोट पर पड़ी, वो रुक गए, और रुक करके इधर उधर देखने लगे हो, कोई देख तो नहीं रहा है। आदमी उठाना भी चाहता है, चोरी करना भी चाहता है, लेकिन ये भी चाहता है कि मेरे को कोई न देखे, चोर भी बनूं और लोगों के नजर में भी न आऊं। चारों ओर दृष्टि डाली और हम तो नीचे गर्दन करके बैठे थे, नजरें झुका के देख रहे थे, और बच्चे भी शांत बैठे थे, उन्हें मालूम था अभी फंसने वाले हैं। जैसे वो नीचे झुके ना रहे, और आदमी जब कोई गलत काम करता है ना तो होश थोड़ा सा खो बैठता है, उस समय होश नहीं रहता है, समझ कुछ कम हो जाती है, आवेश में आ जाता है। जैसे उन्होंने 5 रुपए का नोट छुआ नारायण, वैसे उन्होंने नोट खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उठाने वाले को यह नहीं मालूम पड़ा कि धागा बंधा हुआ है नोट के साथ, वो सोच रही थी कि हवा से दौड़ रहा है, हवा से उड़ रहा है। अब वो नोट के पीछे पीछे जा रहे थे, नोट आगे आगे हवा में उड़ रहा था। बच्चे सफल हो गए, ताली बजा बजा के बच्चे कूद रहे थे, नाच रहे थे, हम भी हंस रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी हम लोगों के ऊपर और समझ गए कि ये क्यों हंस रहे हैं, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, चुप हो गए, नीचे गर्दन करके ऐसे भागे हो। आप समझ गए कि नहीं? आप इतना बड़ा आदमी, लेकिन 5 रुपए जैसे देखे उन्होंने, लोभ पैदा हो गया, और लोभ पैदा होने के बाद जो शास्त्र हैं, दूसरे का धन चाहे 5 रुपए हो, चाहे 5 लाख, चाहे 5 करोड़, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं दूसरे का पैसा उठाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ जाते हैं। अथवा वो रुपया उठाकर नारायण सबको पूछते, भैया ये किसका, लेकिन उनके मन में वो बात नहीं थी, उठाने की बात थी, इसलिए चारों ओर उन्हें दृष्टि डाली कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा है। इसी को बोलते स्मृति भ्रंश। आदमी शास्त्र, मर्यादा, सीमाएं सब कुछ भूल जाता है, स्मृति भ्रंश, और स्मृति भ्रंश होने के बाद वो रास्ते से भटक जाता है ना, वो अलग रास्ता अपना लेता है, और वहीं से भगवान कहते हैं विनश्यति, चरित्र का पतन ही भगवान कहते विनाश। भ्रष्ट होने का ही नाम भगवान यहां विनाश कहते हैं। ये सम्मोह है, कामादि विकार हमें सम्मोह में ले जाते हैं, हमें आवेश में ले जाते हैं, उस समय हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है, हम पराधीन हो जाते हैं। आचार्य यम कहते हैं यही तो होश की जरूरत है, यही तो पुरुषार्थ की जरूरत है, यही तो धैर्य की जरूरत है, बहुत बड़े धैर्य के, धैर्य हत नहीं होना है। प्रलोभन के काल में, भय के काल में हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है। यही तो धैर्य, माने हमारे मन में विचलन पैदा ना हो जाए, हमारा मन वासना में न बहे, इंद्रियों में न बहा दे, हमारा इंद्रिय सक्रिय न होने पाए। आप ध्यान देंगे ये बाहर के विषय, भौतिक पदार्थ इंद्रियों को जगा देते हैं, ये बाहर के पदार्थ हमारा देहभाव जगा देते हैं, हम कोई बाहर की वस्तु देख लेते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, और वो मन का विचलन फिर शरीर में आ जाता है, पहले मन विचलित होता है फिर शरीर विचलित होने लगता है। वो बाहर की वासना मन में पैदा कर हमारे तन को भी भ्रष्ट करने लगती है। परमपूज्य महाराज श्री ने कठोपनिषद के ही प्रसंग में इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की, मन को विचलित करने वाली चीजें होने के बाद भी जिसका मन विचलित नहीं होता है वही धैर्य है। आपको विचलित करने के लिए बाहर की बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हमारा चित्त विचलित ना हो। और तितिक्षा का भी अर्थ यही है। शास्त्र में जो तितिक्षा बोला उसका भी अर्थ यही है, सहनम सर्व दुखानाम सा तितिक्षा निगद्यते। संपूर्ण दुखों का सहना, लेकिन केवल दुखों का ही सहना नहीं होता है, सुखों का भी सहना होता है। सुख और दुख दोनों को सहने का नाम तितिक्षा है। मान अपमान उन दोनों को सहने का नाम तितिक्षा है। कदाचित हम सुख को दुख को सहन कर भी सकते हैं, कदाचित हम अपमान को सहन कर भी सकते हैं, लेकिन अपमान को सहन करना, सम्मान को भी सहन करना बहुत कठिन है। आप ध्यान देंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। हमारा किसी ने अपमान किया आप सहन कर सकते हैं, लेकिन किसी ने सम्मान किया तो मेरा एक प्रश्न है, हम अपमान में फंसते हैं कि अपमान करने वाले व्यक्ति में फंसते हैं? अपमान हमें अपमान में ले जाता है कि अपमान करने वाले व्यक्ति में ले जाता है? किसी ने हमको गाली दी तो हम गाली में फंसते हैं कि गाली देने वाले व्यक्ति में फंसते हैं? किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी है और हमारा चित्त गाली देने वाले में फंस जाता है, बार बार कौन याद आता है? हमको गाली दी, गाली के साथ गाली देने वाला। अभी हम संघर्ष करते हैं, हम उलझने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, प्रतिशोध में आ जाते हैं। वो सारा व्यवहार गाली के साथ है कि गाली देने वाले के साथ है? गाली देने वाले के साथ बंध जाते हैं हम। किसी ने अपमान किया तो हम अपमान करने वाले व्यक्ति में फंस जाते हैं, संघर्ष वहां से शुरू करते हैं हम। और किसी ने सम्मान किया तो हम सम्मान में नहीं अटकते हैं, सम्मान करने वाले व्यक्ति में अटकते हैं। बहुत लंबी श्रृंखला है ये, बंधन की बहुत लंबी श्रृंखला है। हम भोजन करते हैं, हम भोजन में अटकते कि स्वाद में अटकते हैं? बहुत बढ़िया भोजन बना, बहुत बढ़िया भोजन बना, तो आपका ध्यान भोजन पर होता है कि वो बढ़िया वाले पर होता है? अरे बहुत बढ़िया भोजन है, तो भोजन पर ध्यान नहीं है, वो स्वाद पर है। देखने में बहुत अच्छा था, खाने में बहुत अच्छा था, आदमी स्वाद में अटक जाता है, सहन नहीं कर पाया, भोजन किया और स्वाद में अटक गया, तो वो स्वाद हम सहन नहीं कर पाए। आप ध्यान दें, यहां सहन करने का अर्थ क्या है? हम स्वाद को सहन नहीं कर पाए, और जैसे स्वाद को हम सहन नहीं कर पाते नारायण, वैसे हम स्वाद में अटक जाते हैं और वो स्वाद हमें भोजन में ले जाता है। फिर वो बार बार भोजन याद आता है, बार बार स्वाद याद आता है, हम अटक गए। इसलिए हमें सुख को भी सहना है, जैसे दुख को सहना है वैसे सुख को भी सहना है। और सुख दुख को सहने का अर्थ है सुख दुख देने वाले में न हम राग करें और न हम द्वेष करें। हम बहुत गहरे में अटक जाते हैं, पदार्थ में अटक जाते हैं, वस्तु में अटक जाते हैं। एक बार एक दो तीन फैमिली मिलके हम लोग हरिद्वार जा रहे थे इंदौर से बाय कार। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो चर्चाएं शुरू हो गई, हरिद्वार, हरिद्वार के महात्मा, वहां का त्याग, वहां का वैराग्य, बहुत सारे आश्रम। लेकिन उन चर्चाओं में एक दूसरी चर्चा शुरू हो गई, और वो चर्चा थी हरिद्वार में छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात, लोगों ने हमको पूछा कि महाराज आपको भी छोले भटूरे खिलाएंगे हम। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, खाएंगे। लेकिन मैं तब आश्चर्यचकित हो गया, वो चर्चा पर विराम ही नहीं लग रहा था। और उन लोगों ने कहा कि हम हरिद्वार जाए और यदि छोले भटूरे न खाए तो बोले हमारी यात्रा ही पूरी नहीं होगी। ओ, मैंने सोचा गड़बड़ हो रहा है कुछ। बहुत समझाने की कोशिश की, हम लोग पहले हरि की पड़ी जाएंगे, गंगा मैया में स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर जिसको जो खाना है आप खा सकते हैं। पहले तो मान लिया लोगों ने, लेकिन आश्चर्य की बात, न स्नान न कुछ, सीधी, अब हमको क्या मालूम उनकी क्या पक रही थी खिचड़ी, सीधे वो छोले भटूरे की दुकान पर ही ले गए। न स्नान, न साधना, न ध्यान, कुछ नहीं। और उस श्रीमान जी ने बोला कि महाराज ये मेरे दोस्त ने बोला, ये यदि खा के नहीं आओगे तो बोले तुम्हारी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। और छोले भटूरे खाए भरपेट, भूखे तो थे, और उसके बाद फिर साधना होती है, गंगा स्नान। यही तो स्वाद में अटकना है। सहन शक्ति के अभाव में आदमी अटक जाता है। इसलिए तितिक्षा, साधक के लिए तितिक्षा बोला है। तितिक्षा माने कोई आपको गाली भी दे और गाली देने वाले के प्रति आपके मन में तिरस्कार की भावना पैदा ना हो, इसको बोलते सहना। आपको किसी ने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया और सम्मान देने वाले व्यक्ति के प्रति आपके मन में न आदर पैदा हुआ न सम्मान पैदा हुआ। आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां तितिक्षा का अर्थ केवल अपमान को सहने का ही नाम नहीं है, केवल दुख को ही सहने का नाम नहीं है। हमें दुख फंसाता है कि दुख हमें अलग करता है? दुख को नहीं सहना हमें बहुत ज्यादा खतरों में नहीं ले जाता है, लेकिन सुख को नहीं सहन करना हमें बहुत बड़े खतरे में ले जाता है, बहुत बड़े विडंबना में, आसक्तियों में ले जाता है। जब दुख होता है ना, वो दुख सबसे पहला काम क्या करता है? दुख देने वाले से अलग होने के विचारों में ले जाता है। आपको कोई बहुत ज्यादा दुख दे रहा हो तो आप क्या सोचते हैं? छोड़ो, चलो इससे अलग हो जाए। कोई अपमान करता है तो आप क्या सोचते हैं? चलो इससे दोस्ती हम तोड़ ले, इन्होंने हमारा अपमान किया है, तो आप अलग होने की कोशिश करते हैं। दुख, अपमान, पीड़ा यदि आपने सहन नहीं किया तो आप सोचेंगे इनसे हम अलग हो जाए। लेकिन किसी ने सम्मान दिया, सुख दिया, भोजन का स्वाद मिला और आप सहन नहीं कर पाए तो आप क्या सोचते हैं? चलो और हम दोस्ती बढ़ा लेते हैं और हम भोजन कर लेते हैं, हम और खोजेंगे वो सुख, वो स्वाद, वो आनंद हमें और पदार्थों के निकट ले जाता है और आसक्ति बढ़ा देता है, हमारा मन और आसक्ति में चला जाता है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं आपके चित्त को आकर्षित करने वाली चीजें होने के बाद भी, बहुत बड़ा प्रलोभन होने के बाद भी वो चीज हमारे मन को विचलित न कर पाए, हमारे इंद्रियों को विचलित न कर पाए, समझ लो वही धैर्य है, वही तितिक्षा है। और ऐसा साधक ही नारायण वो सत्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा नहीं। जैसे अर्जुन गया स्वर्ग, स्वर्ग के बहुत सारे प्रलोभन आए लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। बालक नचिकेता के सामने बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं, आचार्य यम बहुत सारे प्रलोभन दे रहे हैं और उसके बाद भी बालक नचिकेता कहते जा रहे हैं हमको नहीं चाहिए। वैराग्य है, ये कितना बड़ा धैर्य है, ये कितनी बड़ी तितिक्षा है, ये साधक की जीवन की तितिक्षा, साधक के जीवन का धैर्य है। इसलिए इन्होंने कहा कि विविनक्ति धीरा, जो बहुत धीर होता है वो उस चीज पर चलता नहीं, अपने जीवन के लक्ष्य पर चलता है, भय और प्रलोभन के मार्ग का परित्याग कर देता है। यहीं पर धैर्य की परीक्षा है, साधक के धैर्य की परीक्षा यहीं पर। और यदि धैर्य न हो न श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमात वृणीते। एक बड़ा सुंदर आप रामायण में उदाहरण श्रवण करते होंगे। अभी नवरात्रियों में मैंने वाल्मीकि रामायण की कथा की दिल्ली में। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब भरत जी वशिष्ठ जी अपनी राजमाताओं अनेकों लोगों के साथ भगवान श्रीराम को अयोध्या लौटाने के लिए जा रहे हैं, चित्रकूट गंगा के उस पार आश्रम मिला भरद्वाज मुनि का, और उस आश्रम में रात्रि में रुके भरत। प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्रीराम को लेने के लिए अयोध्या में लौटा लेने के लिए गया था,